ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल शाम मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लगभग 60.42% मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले और सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में दर्ज किया गया। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भिदुड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी कल उपचुनाव हुआ। इरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। इन दोनों सीटों और दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती शनिवार को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समस्त पूर्वोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से त्रिपुरा सरकार के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 2,800 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सरकार बिना किसी भेदभाव, सिफारिश या भ्रष्टाचार के पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दे रही हैं। गृहमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने शांति बहाली के लिए त्रिपुरा में 3 समझौते किए हैं।
हमने इस 10 साल में 3 समझौते कर त्रिपुरा की शांति को आगे बढ़ाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं।
श्री अमित शाह ने कहा है कि राज्य में या तो सशस्त्र गुटों का सफाया कर दिया गया है या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ब्रू रियांग लोगों को स्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने बताया कि श्री ऑल्टमैन ने प्रौद्योगिकी को जनवादी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। श्री ऑल्टमैन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताया। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरापेट्राइटिस भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे से भारत और ग्रीस के बीच संबंध मजबूत होंगे और नीतिगत साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। इस 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम कर रहे श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि फर्जी दोबारा नाम दर्ज करने, गलत जॉब कार्ड बनाने, परिवारों का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से बाहर चले जाने या गांव को शहर के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण श्रमिकों की दर्ज संख्या में गिरावट आई है। इस योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1,08,000 से अधिक सक्रिय श्रमिकों के नाम हटाए गए हैं या निरस्त किए गए हैं, जबकि 2022-23 में केवल 44,227 श्रमिकों के नाम हटाए गए थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में बताया कि इस अवधि के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में 1,08,263 नियमित श्रमिकों के नाम योजना से हटाए गए। भारतीय क्रिकेट टीम का 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड से सामना होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।